أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة فاتحة سے متعلق گزشتہ چند خطبوں میں ذکر چلتا رہا ہے کہ کس طرح یہ نماز کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے، عبادت کے گر بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنتی ہے، اور پھر بنی نو انسان سے تعلق کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے صورت پر محض سرسری نظر نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ ہر نماز میں پڑھتے وقت بڑے غور سے اس کے مضامین سے گزرنا چاہیے، اور انہیں اپنے نفس پر ساتھ ساتھ اطلاق کرتے چلے جانا چاہیے۔ اور سورہ فاتحہ کے آئینے میں اگر انسان اپنی تصویر دیکھنے کی عادت ڈال لے تو اس سے بہتر آرائش کا اور کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر آرائش کا اور کوئی ذریعہ سوچا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ سب سے سچا آئینہ ہے۔ اس سے بہتر حق کے ساتھ یہ آپ کو آپ کی تصویر اس سے بہتر حق کے ساتھ آپ کو آپ کی تصویر دکھانے والا اور کوئی آئینہ نہیں۔ اس ضمن میں الحمد کا جو مضمون پہلے بیان ہوتا رہا ہے اس میں میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ جماعت کو یہ سمجھایا تھا کہ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تر حمد کلیتاً ہر قسم کی کامل حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، اور جو ہم کسی کو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اس ضمن میں میں نے دنیا کے روزمرہ کے مشاہدات آپ کے سامنے رکھے اور سمجھایا کہ کہتے تو ہم یہی ہیں لیکن بالعموم روزمرہ کی زندگی میں خدا کی تخلیق کے حمد کی حمد میں تو ڈوب جاتے ہیں لیکن خالق کی حمد کا ہمیں خیال نہیں رہتا۔ پھول سے محبت کریں گے، گلشن سے محبت کریں گے، اچھے مکانوں سے محبت کریں گے، حسن سے محبت کریں گے، خواہ وہ بے جان حسن ہو یا جاندار حسن ہو، روب اور طاقت سے محبت کریں گے، مگر ان کے پیچھے جو ذات جلوہ فرمایا ہے اس کا دھیان روزمرہ کی زندگی میں انسان کو نہیں آتا۔ تو ایسا انسان جب پانچ وقت یا اس سے بہت زیادہ مرتبہ ہر نماز میں کئی رکعتوں میں الحمدللہ رب العالمین کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کرتا ہے تو اس بات اور اقرار میں کوئی خاص حقیقت نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ وہ یہ کہنے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، لیکن یہ آواز اس کی روزمرہ کی زندگی کا مظہر نہیں ہے، اس کی روزمرہ کی زندگی کی تصویر نہیں کھینچ رہی۔ اس ضمن میں آج میں خصوصیت کے ساتھ اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ پہلے اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی کہ نہیں، کہ خدا تعالیٰ کی حمد کی راہ میں سب سے بڑی روک نفس انسانی کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، और सबसे बड़ा बुद्ध हर इंसान के अंदर मौजूद है, क्योंकि बाहर की दुनिया की हमद में इंसान से इंसान गफलत के नतीजे में बसा औकात खालिक की हमद से गाफिल हो जाता है। लेकिन नफ्स का बुत ऐसा है जो बाकायदा शिर्क के तौर पर बाकायदा शिर्क के ख्यालात पैदा करने वाला है, और इससे बड़ा और कोई बुत नहीं जो खुदा के मुकाबले पर उलूहियत का दावा करे। और अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने नफूस का अपनी नीयतों का तजिया करें तो आप ये देखकर हैरान होंगे कि मवाहिद होते हुए भी बसा औकात आप जब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि तमाम तर हम्द सिर्फ अल्लाह के लिए है तो दिल के गोशे से एक आवाज उठती है अल्हम्दुली अल्हम्दुली सब हम तो मेरे लिए है और मेरे लिए है। चुनाचे ये आवाज अगरचे हर इंसान को इस तरह सुनाई नहीं देती कि वो इसे महसूस करे, इसलिए वो इस आवाज की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, लेकिन फिल हकीकत ये आवाज है जो रोजमर्रा के तजारिब में इंसान अगर तवज्जो से कोशिश करे तो सुन सकता है। मसलन एक अच्छी आवाज वाला गवैया है, जब वो मजमा के सामने बहुत खूबसूरत खुशिलहानी के साथ नज्म पढ़ता खूबसूरत आवाज में खुशिलहानी के साथ नज्म पढ़ता है तो वो दाद जो उसको हर तरफ से मिलती है उसको अपने नफ्स में इस कदर मुतमिन कर रही होती है, इस कदर उसको लज्जत अता कर रही होती है कि उस वक्त उसका खुदा खुद उसका नफ्स बन चुका होता है और उसका जहन इस तरफ कभी नहीं जाता, या बस अक्सर कहना चाहिए नहीं जाता कि ये आवाज कैसे पैदा हुई, किसने उसको अता की, उसकी जाती कोशिश का इसमें कितना दखल है और अल्लाह ताला की रहमत और अता का कितना दखल है। अगर इस मजमून की तरफ तवज्जो मुजूल हो तो हर गवैये की खुद अपनी नजर में कोई भी हैसियत बाकी न रहे। एक खानदान में पैदा होना जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा गला अता किया गया हो, ऐसे माहौल में पैदा होना जहां आवाज को मजीद मांझ कर और सैकल करके ज्यादा खूबसूरत और दिलकश बनाया जा सकता हो, ऐसे जराए मुहैया होना, उन बीमारियों से पाक रहना जो गले को खराब करती हैं और आवाज को तबाह कर देती हैं, ये सारी बातें भी काबिले गौर हैं मगर सती हैं। उनसे और नीचे उतर कर जब आप सौती निजाम का मुतालिया करते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि किस तरह हर इंसान के गले में खुदा तआला ने एक सौती निजाम कायम फरमाया हुआ है जो अरबों साल के अरसे में तरक्की करके यहां तक पहुंचा है, और उसे मांझने और सैकल करने और उसे चमकाने और उसकी सलाहियतों को मजीद उजागर करने में हजार हा जिंदगी की नस्लें इससे पहले अपने अपने दौर तय करने के बाद माजी के हिस्सा का हिस्सा बन गई और किसी को इल्म नहीं कि उन तजारिब में जो कुदरत ने उनके साथ किए क्या क्या कार्रवाइयां आवाज के निजाम को मुकम्मल करने के लिए की गई। जो जानदार हमें आज दिखाई देते हैं उनकी जिंदगी का आगाज से लेकर अब तक का मुतालिया भी हमें बहुत कुछ सबक देता है, और इंसान ये देखकर हैरान रह जाता है कि किस तरह आवाज का आगाज हुआ, हालांकि इससे पहले ये कायनात बिल्कुल खामोश थी, जिंदगी मौजूद थी लेकिन जिंदगी का एक जुज जिंदगी के दूसरे जुज तक आवाज के जरिए नहीं पहुंच सकता था। ये मजमून पहले भी मैंने बयान किया है इस हद तक, लेकिन अब मैं इस ताल्लुक में बताना चाहता हूं कि हर वो शख्स जिसको खुदा ने अच्छी आवाज अता की है अगर उसका जहन इन चीजों की तरफ कभी मुंतकिल ना हो और हमेशा अपनी ही तारीफ में डूब जाया करे तो उसके दिल से एक बुत पैदा होना शुरू हो जाएगा जो मजीद ताकतवर होता चला जाएगा और उसके बाकी वजूद पर भी काबिज हो जाएगा, क्योंकि शिर्क का बुत अपने दायरे तक महदूद नहीं रहा करता बल्कि फैलता है और बढ़ता है और ज्यादा ताकतवर होता चला जाता है। اسی طرح ایک اچھا مقرر ہے جب وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے اور داد پاتا ہے، یا ایک اچھا شاعر ہے جسے خدا توفیق دیتا ہے کہ اپنے خیالات کو نہایت لطافت کے ساتھ شعروں کے خوبصورت کوزوں میں بند کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے، تو عموماً یہی مضمون دہرایا جاتا ہے جس کا میں پہلے آواز کے سلسلے میں ذکر کر چکا ہوں. ایک اچھا مصور ہے، ایک اچھا معلم ہے، ایک اچھا صناع ہے، غرضی کے انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں، خواہ وہ جسمانی ہوں، علمی، عقلی ہوں یا قلب سے تعلق رکھنے والی ہوں، ان سب پر یہی مضمون صادق آتا ہے کہ ہر انسان بالآخر اپنی مدع میں ڈوب جاتا ہے. اور ایسا شخص جب خدا کے حضور بار بار یہ اقرار کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کی روزمرہ کی زندگی کا اس اقرار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بس جب نماز پڑھتے ہوئے آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس آئینے میں اپنی صورت دیکھا کریں اور غور کیا کریں کہ آپ کے روزمرہ کی زندگی کے تجارب میں کتنی مرتبہ عملاً آپ نے واقعی حمد خدا ہی کے حضور پیش کر دی. جو حمد بنی نو انسان نے آپ کے پہ حضور پیش کی آپ نے اپنا نہیں سمجھا، بلکہ کامل عاجزی اور انکسار کے ساتھ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہوئے اس حمد کو خدا ہی کے حضور پیش کر دیا، کیونکہ سب تحفے اسی کے حضور پیش کرنے کے لائق ہیں، اور خود اس حمد سے خالی ہو گئے. اگر آپ ایسا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کا دل حمد سے خالی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالی اس حمد کو ہمیشہ بڑھا کر واپس کرتا ہے جو اس کے حضور پیش کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان واقعی لائق حمد بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو اس کی حمد کی جاتی ہے وہ خدا کی آواز کے ساتھ حمد کی جاتی ہے. خدا کی آواز دلوں میں حرکت پیدا کرتی ہے، خدا کی آواز ذہنوں پر قابض ہوتی ہے، اور بنی نوع انسان سے جو ایسے شخص کی حمد کے گیت اٹھتے ہیں وہ اسے محمود اور محمد بنا دیتے ہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد رکھنے میں یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ آپ نے اپنی تمام حمد کلیتاً ساری زندگی ہمیشہ خدا کے حضور پیش کی، اور آپ ہمیشہ حمد سے خالی ہوتے چلے گئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد بنا دیا. بس احمد محمد میں تبدیل ہوتے ہیں اگر وہ خالص ہوں اور سچے ہوں اور مخلص ہوں، اور احمد کے طور پر خدا کی حمد کریں اور اپنے آپ اپنا بت بیچ میں حائل نہ ہونے دیں. اس نقطہ نگاہ سے الحمدللہ رب العالمین کا مضمون ایک بہت ہی لمبا سلسلہ انسانی تربیت کا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ سلسلہ ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مضمون ایسا باریک ہے اور بعض پہلے اس کے پہلو اس کے انسانی نظر سے ایسے مخفی رہتے ہیں کہ ساری زندگی کی محنت درکار ہے اپنے آپ کو اپنی حمد سے پاک کرنے کے لیے، اور اس کے باوجود بھی انسان اس مقام محمود کو حاصل نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے. اس لیے دعا کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے انسان کو یہ نفس کا جہاد ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے. اکثر اوقات انسان جو اپنی حمد کا عادی ہو وہ فرحن فخور بھی ہو جایا کرتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے حد خوش ہونے کی عادت پڑ جاتی ہے اور تعلی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. چنانچہ قرآن کریم نے فرحن کے مضمون کو حمد کے ساتھ، یعنی انسان کی جھوٹی حمد کے ساتھ باندھ کر پیش فرمایا ہے، اس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا. لیکن اس کے نظارے آپ نے بسا اوقات کھیلوں کے میدانوں میں بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک کبڈی کا کھلاڑی ہے، وہ کسی اچھے مضبوط کھلاڑی کو، ایک جس کو پنجابی میں ہم دھول کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں، دھول دھپا تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دھول لگا کر گراتا ہے
और उसकी शिकंजे से निकलकर वापस भागता है तो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। बाद दफा वो दोनों उंगलियां हाथ ऊंचे करके खड़ी कर देता है, बाद दफा मुंह से आवाजें निकालता है कि मैंने कमाल कर दिया है, बाद दफा वो छाती पर हाथ मारता है। इसी तरह फुटबॉल के मैदान में जब भी कोई शख्स गोल करता है तो आपने देखा होगा कि किस तरह वो अजीब गरीब हरकतें करता और उछलता कूदता और फख्र मुबाहात के इजहार के लिए अपने जिस्म को मुख्तलिफ शक्लें देता है। बाद आवाजें निकालते हैं, बाद खामोश इजहार करते हैं। ये जो मनाजिर हैं ये नुमायां तौर पर आपकी नजर के सामने रहते हैं और इनसे मालूम होता है कि इंसान किस हद तक हम्द का प्यासा है और ये प्यास उसको मजबूर कर देती है कि जहां हम्द के चंद कतरे मिलें उनको ना सिर्फ पिए बल्कि फख्र से इजहार करे कि हां मेरा दिल आज मेरी प्यास बुझ गई। ये वाकयात रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे हो रहे होते हैं। जब हम दूसरों को देखते हैं तो दिखाई देते हैं, जब अपने ऊपर नजर डालते हैं तो दिखाई नहीं देते। बस इसलिए जरूरत है इस मजमून को खूब खोलकर बयान करने की कि अपने अंदर हम्द चाहने का जज्बा इस तरह दिखाई नहीं देगा जैसे दूसरे का हम्द चाहने का जज्बा आपको दिखाई देता है। दूसरे की ताली पर आपको बाज़ दफा हंसी भी आ जाती है मगर ये भूल जाते हैं कि ये ताली आपका नफ्स रोजाना करता है और करता चला जाता है और कोई आंख इसको देखती नहीं। कुरान करीम फरमाता है कि जब ये जज्बा आगे बढ़ता है तो फिर ऐसी हम्द का भी इंसान तालिब हो जाता है जो जाहरी तौर पर भी उसको नहीं मिलनी चाहिए। यानी बाज हम्द के किस्से तो हैं जैसे मैंने बयान किया है, उसने एक इंसान ने अच्छा काम जरूर किया है, वो अच्छा काम खुद उसकी जाती तौफीक से ऐसा मुतल्लक नहीं था जितना अल्लाह ताला की बे इंतहा अनायात से ताल्लुक रखता था। उसका उस मौके पर इस बात को भुला देना या ये अहलियत ना रखना कि अपने अच्छे फेल के पीछे खुदा के हाथ देखे और खुदा की तखलीक के अनगिनत करिश्मों का मुलाहजा करे का नजारा करे तो ये चीज जो है ये एक हद तक समझने के लायक है और समझाने के लायक है। लेकिन कुरान करीम फरमाता है कि इंसान सिर्फ इसी बात पर नहीं साराजी होता, यहीं ठहर नहीं जाता। फरमाया वल्ला फहसबन अल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदु बिमा लम यफ़लू फला तहसबन्नहुम बिमफाज़त मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम। कि तू हरगिज़ ये गुमान न कर कि वो लोग जो छोटी छोटी बातों पर इतराते हैं, जो कुछ गुल वो खिलाते हैं उन पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं, जो कोई अच्छा काम किया या किसी किस्म का भी ऐसा काम किया जो कम से कम उसकी नजर में काबिल तारीफ हो तो उस पर वो छोटी छोटी बातों पर इतराने लग जाते हैं। वयुहिब्बूना युहमदु बिमालम यफ़लू, इसके साथ इस बीमारी में भी जरूर मुब्तला होते हैं कि जो वो काम नहीं करते उनके लिए भी तारीफ के खाह हो जाते हैं। और जब ये बीमारी बढ़कर इस मुकाम तक पहुंच जाती है फला तहसबन्नहुम बिमफाज़त मिनल अज़ाब, फिर यकीन रख कि ये लोग अजाब से महफूज नहीं है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनको दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाएगा। इस मजमून का ताल्लुक यकीनन आखिरत से है लेकिन ये गलत है कि इस दुनिया से नहीं, क्योंकि तारीफ की प्यास जब इस हद तक बढ़ जाती है कि इंसान उन चीजों पर भी तारीफ का की तमन्ना रखने लग जाता है, तारीफ करवाने के लिए उसके दिल में प्यास लग जाती है जिन चीजों में उसका कोई भी हिस्सा नहीं होता। यानी काम किसी और ने किया और तारीफ इसने अपनी करनी शुरू करवा दी। ये बात भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में हर घर में मुशाहदा कर सकते हैं, हर इंतजाम में मुशाहदा कर सकते हैं और इंसानी ताल्लुकात में और कौमों के ताल्लुकात में भी आपको ये बात दिखाई देगी अगर आप बारीक नजर से देखें। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया हो और बताया ना जाए घर में मसलन बच्चों के साथ गुफ्तगू करते हुए कि हमें इल्म है कि किसने अच्छा काम किया है और आप अचानक पूछें कि किसने किया है तो बेख्तियार कई बच्चे हाथ ऊंचा करेंगे कि हाँ हमने किया है। अगर उनको ये यकीन हो जाए कि पता नहीं लगेगा कि किसने किया था फिर तो अक्सर दिल बच्चों के अंदर ये रुझान पाया जाता है कि वो उस बात में अपनी तारीफ करवाएं जो बात उन्होंने नहीं की, उनके भाई या किसी बहन ने की थी लेकिन चूंकि तारीफ हो रही है इसलिए वो कहते हैं हमने किया। और अगर ये ना कोई कर सके तो तारीफ में हिस्सा डालने की आदत तो इतनी पुख्ता है कि वो तो उससे तो शायद ही कोई इंसान बरी हो। अगर आप किसी से पूछें बहुत अच्छा खाना पकाया किसने पकाया है तो अगर घर की मालिका ने पकाया होगा तो वो कहेगी मैंने पकाया है, वो दूसरा साथ बोलेगा कि मसाला तो मैंने बताया था, एक तीसरा बताएगा कि तरकीब मेरी थी, एक चौथा कहेगा कि डोई तो मैं फेरता रहा हूं। गर्जी के हर शख्स बीच में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करता है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों का मुशाहदा है लेकिन ये आगे जाकर बहुत गहरी बीमारी में तब्दील हो जाता है और ऐसे अशखास को बाद अजां एहतमाल है कि गहरी रूहानी बीमारियां लाहक ना हो जाएं। इसकी तफसील में यहां जाने की जरूरत नहीं, हर शख्स अपने जिंदगी के वाकयात पर गौर करके ये जायजा ले सकता है कि किस हद तक उसने इस मामले में ठोकर खाई। यानी इस तारीफ की एक ख्वाहिश तो तभी है उसे अपने मुकाम पर रखना और लुगाम डालकर रखना ये एक अलग मसला है, मगर जो वाकया हुआ ही नहीं उस ज़मन में झूठी तारीफ की तमन्ना ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये शिर्क की बदतरीन किस्म बन जाती है। और ऐसे लोग फिर सबसे ज्यादा खुदा की तारीफ उससे छीनते हैं और अमदन हर को चीज में अपने जिम्मे बात लगाते हैं कि हमारी तरफ से हमारी वजह से हुआ है। और ये बीमारी जब ज्यादा बारीक हो जाती है तो अजीबोगरीब शक्लें अख्तियार करती है। मैं उसका एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको मालूम होगा कि नेक इंसान भी बाज इस किस्म की बीमारियों से महफूज नहीं रहते। आमतौर पर मवाहिद हैं लेकिन बहुत सी बातों में गलती कर जाते हैं। ये भी रुझान पाया जाता है कि अगर खुदा का कोई फजल हो तो इंसान अपने अंदर वो नेकी तलाश करता है कि किस वजह से फजल हुआ है। एक खुदा ने कोई खास एहसान किया तो इंसान कहता है इसलिए कि मैंने गरीबों की हमदर्दी की थी। खुदा ने बहुत एहसान किया शफा बख्शी तो इंसान सोचता है कि इसलिए किया है कि मैंने फलां इंसान के साथ नेकी का सलूक किया था। और यहां तक कि जब किसी शख्स पर खुदा का खास फजल नाजिल हो तो लोग भी जो तबसरे करते हैं उनमें उस शख्स की खूबियां तलाश कर रहे होते हैं कि खुदा ताला ने जो इस पर यह फजल किया है तो ये बात सुनी गई इसकी, उसकी ये नेकी काम आई। और रोजमर्रा के मुहावरे में हमारे यहां ये बात अक्सर सुनने में आती है उसकी तो फलां नेकी काम आ गई। हालांकि वाकया ये है कि इंसान की नेकियां क्या, उनकी हैसियत क्या, खुदा ताला अगर इंसान की नेकियों के मुकाबले पर उसकी बदअमालियों का हिसाब करे तो किसी के पल्ले कोई नेकी बाकी न रहे। अपनी नेकी की तरफ ख्याल आ जाता है और बदियां इंसान भूल जाता है और वो खुदा के एहसानात जो खालिसतन फजल के नतीजे में हैं उन एहसानात को अपनी तरफ मंसूब करने लग जाता है कि मेरी किसी खूबी के नतीजे में ऐसा हुआ। लेकिन एक आरिफ बिल्ला इस मामले में कभी धोखा नहीं खाता। चुनांचे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मुनाजात में अर्ज करते हैं कि सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ न लाए। कैसा सादा लेकिन कितना अजीम और कवी इजहार है, कितनी गहरी और दायमी हिकमत इसमें बयान फरमा दी गई है। सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ ना लाए, बस अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जब तक ये रुझान पैदा ना हो कि सब कुछ तेरी अता है, घर से हम कुछ नहीं लाए, उस वक्त तक अल्हम्द का मजमून कामिल नहीं हो सकता। और उस वक्त तक इया का नाबुदो की दुआ में ताकत पैदा नहीं हो सकती। बस जब आप कुल्लियतन हम्द से अपने आप को खाली कर लेते हैं, अल्लाह के जितने एहसानात हैं उनको खुदा के एहसानात के तौर पर गिनते हैं और उनकी हम्द के गीत गाते हैं, तो फिर जब कहते हैं इया का नाबुदो व इया का नस्ताईन, तो दिल पूरी सच्चाई के साथ ये अर्ज करता है खुदा के हजूर, ये इकरार करते हुए अर्ज करता है कि हमने तो अपनी हम्द समझी कुछ नहीं, इसलिए हम अपनी इबादत नहीं करते, हमने तो किसी गैर की कोई हम्द समझी ही नहीं, इसलिए हम किसी गैर की इबादत नहीं करते, और तू जानता है और तू देख रहा है कि जब तमाम तर हम्द हम तेरे हजूर पेश कर बैठे तो अब सवाए तेरी इबादत के हमारे पास कुछ नहीं रहा। ऐसी सूरत में अब्द आबिद बन जाता है और एक आम इंसान नहीं रहता। यूं तो हर इंसान खुदा का बंदा है, लेकिन सूरह फातिहा एक अब्द को आबिद में तब्दील करती है, तब उसका यह हक है कि वो ये अर्ज करे इय्याका नस्तईन कि सब कुछ तेरे खजाने में जमा हो गया, हमारे पास तो रहा ही कुछ नहीं, इसलिए हम तुझसे ही मदद चाहते हैं और तेरी मदद के बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इस नस्ताइन में बहुत कुछ शामिल है। इस नस्ताइन की दुआ में हर दुआ मांगी जा सकती है और आज खुद इस दुआ में हमद की तलब भी शामिल हो जाती है। चुनाचे जब इंसान इन तमाम मराहिल से गुजरता है, फूंक फूंक कर कदम रखते हुए गुजरता है, एहतियात के साथ गुजरता है, शिर्क से अपने आप को कुल्लियतन पाक कर लेता है और हकीकत में अपना मुकाम खुदा के हजूर समझने लग जाता है, उस वक्त जब इया का नस्ताइन कहता है तो उसकी कही व अन कही सारी दुआएं कबूल होती हैं। और उसके बाद फिर जब कहता है एदन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, तो फिर दुआएं एक नए मजमून में दाखिल हो जाती हैं। इनाम वाले मजामीन हैं जिनका कोई सिलसिला कोई इंतहा नहीं, जिनकी कोई हद नहीं है और एक जारी सिलसिला है। इस ज़मन में ये याद रखें कि अनमता अलैहिम के मजमून में एक पूरी तारीख हमारे सामने रख दी गई है, क्योंकि इससे पहले इस बात पर मैं गुफ्तगू कर चुका हूं इसलिए मजीद इसे नहीं छेड़ता, लेकिन अनमता के चार मरातिब हैं और सूरह फातिहा में इब्तिदा में खुदा की चार सिफात पेश फरमाई गई हैं। इन चारों सिफात से जिस इंसान का ताल्लुक कामिल हो जाएगा वो अनमता में आखिरी मुकाम तक पहुंचेगा, और जिस हद तक उसका सिफात बारी ताला से ताल्लुक कमजोर होगा उसी हद तक अनमता के अलैहिम के गुरोह में उसे निस्बतन अदना मुकाम नसीब होगा। बस ये कहना गलत है कि कोई मुकाम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, हर मुकाम जारी है, लेकिन सूरह फातिहा में सिफात बारी ताला को जिस रंग में पेश फरमाया गया है उन सिफात का आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गहरा ताल्लुक है, जिस कामिल अबूदियत के साथ जिस कामिल इंकिसार के साथ हजरत अकदस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नफ्स को हम से खाली करके रबूबियत से ताल्लुक जोड़ा, रहमानियत से ताल्लुक जोड़ा, रहीमियत से ताल्लुक जोड़ा, मालिकियत से ताल्लुक जोड़ा, उसके बाद ये ताल्लुकात का मेयार बहुत बुलंद हो चुका है। इसलिए आइंदा के लिए खुदा ताला ने यह फर्ज कर दिया कि मैं युत अल्लाह व रसूल फौलाए का माल लजीना अन्नम अल्लाह अलैहिम। अब रबूबियत रहमानियत रहीमियत और मालिकियत से आम ताल्लुक काम नहीं देगा, जो अल्लाह और इस रसूल की अतात करेगा और उन अदाओं के साथ खुदा से ताल्लुक बांधेगा जिन अदाओं के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से ताल्लुक जोड़ा है, उसके लिए इनामात के सब दरवाजे खुले हैं। और चूंकि ये मजमून मुश्किल हो गया है और बुलंदतर हो गया है, और डेमोन्स्ट्रेटर ने, जिसने इस मजमून को अपनी जिंदगी पर जारी करके दिखाया था, इस मजमून को दर्जा कमाल तक पहुंचा दिया है, इसलिए आखिरी मुकाम तक पहुंचना मुश्किल तर हो गया है। लेकिन अदना मुकाम भी इस अतात के ऐसे हैं जो गुज़श्ता अंबिया, गुज़श्ता जमाने के आला मुकामात के बराबर दर्जा पाने वाले हैं। चुनांचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजमून को इस तरह खोल कर बयान फरमा दिया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, उलमा तो नबी नहीं है लेकिन मेरी उम्मत के मैयार के लिहाज से नबी नहीं है। जहां तक गुज़श्ता उम्मतों का ताल्लुक है, उनके नबियों के बराबर तो मेरी उम्मत में तुम्हें बहुत से उलमा और वली और बुजुर्ग मिलेंगे। बस ये वो मजमून है जिसके पेश नजर अनमता अलहम ने एक ऐसा वसी दरवाजा खोला है और एक ऐसे रास्ते पर हमें जारी करने की दावत, जारी कदम बढ़ाने की दावत दी है जो लामुतना ही है। और तमाम अंबिया की गुज़श्ता तारीख हमारे सामने वो इकट्ठी सूरत में पेश कर देता है। गोया उस रास्ते पर मुख्तलिफ झंडे लगे हुए हैं दूर तक, और सबसे आखिर पर मुकाम मोहम्मदियत का झंडा है, और मुसलसल ये सलाह आम दे रहा है कि आना है तो यहां तक आओ और इससे पहले रुकने की कोशिश ना करो, उससे पहले कि थकन तुम्हें मगलूब ना कर दे। बस इस सफर में जिस मुकाम पर भी इंसान दम दे, वही मुकाम अनमता अलहम का मुकाम है, और बहुत ही बड़ा खुशनसीब है जिसे मोहम्मद रसूल सल्लम के कदमों तक पहुंचने की सआदत नसीब हो जाए। इसके बाद मगदूब अलहम वाला द्वालीन का मजमून शुरू होता है, और वहां भी ये बात याद रखने के लायक है कि मगदूब अलहम की तशरीह में अगरचे हम ये कहते हैं कि यहूद मुराद हैं, और द्वालीन की तशरीह में अगरचे हम ये कहते हैं कि ईसाई मुराद हैं, मगर अल्लाह की ये शान है और सूरह फातिहा की फजाहत व बलागत है कि किसी कौम किसी मजहब का नाम नहीं लिया। मजमून सिर्फ ये बयान फरमाया गया कि खुदा की मस्कूरा चार बुनियादी सिफात से जो शख्स कुल्लियतन ताल्लुक काट लेगा या इस हद तक काट लेगा कि खुदा की रहमत से वो काटा जाए, उसे मगजूब अलहम शुमार किया जाएगा। और जो शख्स कुछ ताल्लुक बरकरार रखेगा लेकिन टेढ़े रंग में और कजी के साथ, उसको दौलीन के जुमरे में शुमार किया जाएगा। इस मजमून पर आप गौर करें तो बहुत ही वसी तारीखी मुतालिया है जो आपके सामने खुलता है। वो कौमें जो मगदूब हुई, कुरान करीम ने खुद बयान फरमाया कि क्यों मगदूब हुई, किस किस तरह किस किस जगह उन्होंने खुदा की बुनियादी सिफात से अपना ताल्लुक तोड़ा, और बार बार तोड़ा, एक दफा नहीं, और कितने लंबे अफफ के बाद, कितने लंबे हिल्म के बाद बिल आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें मगदूब करार दिया। तो उसमें इस मुतालिया से आपको मालूम होगा कि किन चीजों से बचना है, और यह भी मालूम होगा कि छोटी छोटी बातों पर मायूस होने की जरूरत नहीं है, कोशिश फर्ज है। अगर एक ठोकर खाते हैं तो तब भी अगरचे खतरे का मुकाम है, लेकिन आखिरी तौर पर आपको खुदा ताला की तरफ से हमेशा के लिए मरदूद नहीं करार दे दिया गया। खुदा ताला ने कौमों को एक लंबे अरसे के बाद, जो हजार साल से जायद अरसे पर फैला पड़ा है, उनको मौजूब करार दिया उनकी बार बार की गलतियों के नतीजे में और गलतियों पर इसरार के नतीजे में। बस इससे जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि आखिरी सांस तक जीने की उम्मीद तो है, लेकिन अगर गलतियां करते हुए हम मारे गए तो हम मगलूब की हालत में मारे जाएंगे। बस एक तरफ तो ये उम्मीद का पैगाम भी है, और दूसरी तरफ एक इबरत का पैगाम भी है। और याद रखने के लायक बात यह है कि यहूद को नाम सूरह फातिहा में क्यों नहीं लिया गया, इसलिए कि कुरान करीम ये ऐलान करता है कि मिन हैसुल कौम, मगजूब होने के बावजूद उनके अंदर आज भी नेक लोग मौजूद हैं, आज भी हक परस्त लोग मौजूद हैं, आज भी मवाहिद मौजूद हैं, आज भी खुदा से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। अगर उन्हें इस्लाम का सही पैगाम पहुंचता, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के हुस्न से उनकी शनासाई होती, तो वो जरूर इस्लाम कबूल कर लेते और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के गुलामों में शामिल हो जाते। मगर अपने अपने माहौल में कटे हुए, खुदा की इबादत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, उसके लिए कुर्बानियां देते हैं। बस देखिए सूरह फातिहा ने किस हद तक अदल का हक अदा फरमाया है। मगजूब की तारीख भी हमारे सामने खोल के रख दी, लेकिन साथ ये भी मुतनब्बे कर दिया कि किसी एक कौम को इन मानों में मगजूब समझना कि उनमें फिर कोई नेक आदमी पैदा नहीं हो सकता, ये गलत है। इसलिए जहां कौमी तौर पर मगजूब फरमाया, वहां नाम किसी का नहीं लिया, और जहां नाम लेकर यहूद को कुरान करीम ने मगजूब करार दिया, वहां साथ साथ इस्तिस्ना करता चला गया और बार बार हमें मुतनब्बे किया कि खबरदार, मिन हैसिल कौम, यहूद को मगजूब ना करार देकर हमेशा सब तमाम के तमाम को रद्द ना कर देना, कि तमाम के तमाम को जहन्नमी करार ना दे देना। इसी तरह मिन हैसिल कौम, ईसाइयों को ज़ाल करार देते हुए, यानी गुमराह करार देते हुए पूरी तरह रद्द करके ये दावा ना कर बैठना, नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, कि ये सारे के सारे नाउज़ बिल्ला जहन्नमी और गंदे और खुदा से दूर लोग हैं। बार बार कुरान करीम ने इस बात का इजहार फरमाया कि इनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, इनमें भी नेक हैं, इखलास से ईमान लाने वाले हैं, और हम यकीन दिलाते हैं कि जब तक ये अपने सच्चाई के तसव्वुर के मुताबिक अपनी तालीमात पर अमल करते रहेंगे, इनको कोई खतरा नहीं है और इनके अजर खुदा के जिम्मा है। पर सूरह फातिहा ने जहां मगदूब और दालीन का बगैर कौमों का नाम लिए जिक्र फरमाया, वहां इस तरफ भी हमारी तवज्जो मबजूल फरमा दी, और इसमें भी हमारे लिए एक उम्मीद का पैगाम है कि अगर ऐसी कौमें जो हजार साल, 2000 साल, 4000 साल तक बार बार खुदा ताला से की नाशुक्री करती रहीं और उसकी नाफरमानी करती रहीं और उसके बंदों पर जुल्म भी करती रहीं, उनमें भी नेकों की गुंजाइश मौजूद है और नेकी की गुंजाइश मौजूद है, तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, जो आखिरी और कामिल दीन है, उससे वाबस्ता लोगों के मुतल्लिक ये कहना कि नाउज़ बिल्ला वो सारे जहन्नमी हो गए, सारे काफिर और बेदीन हो गए, ये बहुत ही बड़ा जुल्म होगा। बस जमात अहमदिया के लिए खसूसियत से इस पे सबक है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जहां ऐसे लोगों पर सख्ती फरमाई है जिन्होंने जुल्म और तादी और इनाद में हर हद फलांग दी, और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक नहायत ही नापाक और जालिमाना रवैया अख्तियार किया, वो जुबान महज उस गुरोह के चंद लोगों से ताल्लुक रखती है जो फसाद और फितने और जुल्म में हद से ज्यादा बढ़े हुए लोग थे, आमदुल मुस्लिमीन से उसका ताल्लुक नहीं। चुनांचे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मजमून को दूसरी जगह खुद खोल कर बयान फरमाया है और फरमाया, जहां तक आम मुसलमानों का ताल्लुक है उनसे बेहद मोहब्बत रखता हूं, उनमें सुलहा भी हैं, उनमें खुदा के बुजुर्ग भी हैं, और खुदा ताला की अता करदा खबर के मुताबिक उनमें बड़े बड़े मर्तबा रखने वाले लोग हैं, सुलहाए अरब भी हैं और अब्दालुशाम भी हैं। बस जमात अहमदिया को सूरह फातिहा से ये इनकिसार भी सीखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हम में से हर शख्स की निजात की कोई जमानत नहीं, क्योंकि हर कौम में ऐसे इस्तिस्ना होते हैं कि अच्छों में से बुरे लोग भी पैदा हो जाते हैं और बुरों से अच्छे लोग भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए ना अनमता के मजमून में किसी कौम का जिक्र फरमाया, ना मगजूब और दालीन के मजमून में किसी कौम का जिक्र फरमाया, और इस मजमून को खुला रहने दिया। बुनियाद यही है और फैसले की कसौटी यही है कि हर वो शख्स और हर वो कौम جو خدا تعالیٰ کی ان چار صفات سے گہرا تعلق جوڑتی ہے اور اپنے آپ کو دوئی کی ملونی سے پاک کرتی ہے، جن صفات کا سورہ فاتحہ میں تعارف فرمایا گیا ہے، وہ انعمتا علیہم میں شمار ہوگی اگر خدا تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو اور واقعتاً وہ اپنے تعلق میں مخلص ہو. لیکن ان کے اندر بھی استثناء ہوتے ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس لیے ہمیں ہمیشہ نگران رہنا چاہیے اور اپنے نفس پر بھی نگران رہنا چاہیے، اور بحثیت جماعت اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے بچوں، اپنے مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں سب کے اوپر نگران رہنا چاہیے. تو رمضان مبارک میں آپ جہاں دوسری دعائیں کریں گے وہاں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے ان مضامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں، اپنے اندر ایک شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے شعور کو ہمیشہ بیدار رکھنے کی کوشش کریں. وہاں اپنے بھائیوں کے لیے، کمزوروں اور غافلوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے اندر سے ایک باشعور انسان پیدا فرما دے جو خلق آخر کا آغاز ہوگا. قرآن کریم میں جہاں خلق آخر کا ذکر فرمایا ہے، وہ خلق آخر انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک غافل انسان سے ایک باشعور انسان جنم لینے لگتا ہے. وہ رفتہ رفتہ آنکھیں کھولتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، اپنے اندرونی ماحول کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اس کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، آنکھیں ملتا ہے تو اور زیادہ روشنی دکھائی دیتی ہے. رفتہ رفتہ وہ اپنے نفس کا شعور ہے جو عرفان باللہ میں منتقل ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر سے ایک خلق آخر ظاہر ہوتی ہے. بس اس رمضان میں خصوصیت کے ساتھ بنی نوع انسان اپنے لیے یہ دعائیں کریں اور بنی نوع انسان کے لیے بھی یہ دعائیں کریں کہ وہ دعوے تو بہت کرتے ہیں، ان کو بھی خدا تعالیٰ کوئی شعور تو عطا کرے. میں نے پچھلے جو غلف سے متعلق خطبات تھے ان میں بڑے درد کے ساتھ بعض آنے والے خطرات کی نشاندہی کی تھی. ان میں ایک یہ تھا کہ مڈل ایسٹ سے، شرق اوسط سے امن ہمیشہ کے لیے اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جن خطرات کا اظہار کیا تھا وہ ابھی جیسے کہتے ہیں سیاہی گیلی رہی ہو ابھی تو بات ظاہر ہونے لگ جائے، سیاہی سوکھی بھی نہ ہو، ویسے ہی کیفیت ہوئی ہے. شام کے اوپر اسرائیل نے جنگ ختم ہوتے ہی یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اب عراق سے خطرہ تو نہیں رہا مگر شام سے ہمیں خطرہ شروع ہو گیا ہے. اور وہی باتیں جو پہلے عراق کے متعلق کہی جاتی تھیں اب شام کے متعلق کہی جانے لگی. پھر وہ خطرے جو کہے تھے کہ جو میں نے پیش کیے تھے، یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک میں نے خود غیب کی خبریں بنائی تھیں، مگر ہر انسان حالات کا جائزہ لے کر اندازے لگاتا ہے. بس میں نے بھی جہاں تک ان قوموں کے مزاج کو سمجھا، کچھ اندازے لگائے، اور میرا اندازہ یہ تھا کہ عراق کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا اور بعض دوسری قوموں سے اندر کھاتے مخفی طور پر ہو سکتا ہے سمجھوتے ہو گئے ہوں کہ تم فلاں حصے پہ قبضہ کر لینا، تم فلاں حصے پہ قبضہ کر لینا. بس عراق میں جو بغاوت ہو رہی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا دوسری قوموں سے کوئی تعلق نہیں، مگر جو لوگ بھی اس صدی کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں جہاں بغاوتیں ہوئی ہیں وہاں ضرور دوسری قوموں کا تعلق ہوتا ہے. آج کے زمانے میں طاقتور منظم فوجوں سے لڑنے کی عوام الناس میں طاقت ہی نہیں ہے. جب تک باہر سے امداد نہ ہو، جب تک باہر سے شہ نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ملک میں واقعتاً منظم بغاوت ہو جائے. چنانچہ افغانستان میں جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں، اگر امریکہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا مجاہدین کی مدد سے تو وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ ممکن ہی نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر ویت نام میں روس ویت نامیوں کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیتا تو امریکہ کو جو بالآخر عبرت ناک شکست ہوئی وہ ممکن نہیں تھی. آٹھ گیارہ سال غالباً ساڑھے آٹھ سال کا عرصہ ہے جو انہوں نے وہاں بہت ہی دردناک جنگ کی شکل میں
جنگ کی حالت میں گزارا ہے، وہ جنگ چند مہینوں کے اندر ختم ہو سکتی تھی اگر امریکہ کے مقابل پر روس ان کا مددگار نہ ہو رہا ہوتا. تو اس لیے بیرونی خطرات پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی ہوں گے، لیکن پہلے دو سمتوں سے ہوتے تھے، اب ایک ہی سمت سے ہیں. اس لیے اس رمضان میں خاص طور پر یہ دعائیں کریں کہ اب جبکہ ایک ہی طاقت ہے جو دنیا پر غالب آ چکی ہے اور وہ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عظیم طاقت کو، جیسی طاقت آج تک کبھی دنیا کی تاریخ میں پہلے نہیں ابھری، وہ ساری دنیا پر اس طرح غالب آ چکی ہو کہ مقابل کی ہر طاقت اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہو، اس طاقت کو یہ توفیق نہ دے کہ خدا کے بندوں سے ظلم کا سلوک کرے. اس دعا کی بڑی شدید ضرورت ہے. دعا کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ امریکہ کو یہ ہوش دے، یہ عقل دے کہ وہ خدا بننے کی بجائے خدا کا نمائندہ بننے کی کوشش کرے، اور اگر واقعی امریکہ اس طاقت سے سچے دل کے ساتھ استفادہ کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں امن پیدا کرنا چاہتا ہے تو سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں کہ امریکہ انصاف پر قائم ہو جائے، کیونکہ عدل کے بغیر دنیا میں کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا. اور جو شخص عدل پر قائم ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کا نمائندہ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک گہرا راز ہے. عدل کے فقدان سے شرک پیدا ہوتا ہے، خدا کے عادل بندے مشرک نہیں ہو سکتے. اس لیے خدا کے عادل بندے خدائی کے دعوے بھی نہیں کر سکتے. بس امریکہ کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ تاریخ میں کبھی کسی قوم کو ایسا موقع نصیب نہیں ہوا جیسا کہ امریکہ کو نصیب ہوا ہے کہ تمام دنیا کو اپنی طاقت کے زور سے عدل سے بھر دے اور عدل کے نتیجے میں دنیا کو انصاف عطا کرے، اور یہ خدا اس کو توفیق نہ دے کہ اس کے برعکس خود خدائی کا دعوے دار بن جائے اور زور اور طاقت کے ساتھ اور جنبے داریوں کے نتیجے میں اور سیاسی چالبازیوں کے نتیجے میں دنیا سے اپنی طاقت کا لوہا منوانے کی کوشش کرے. اگر امریکہ نے ایسا کیا تو جیسا کہ میں پہلے بیان کیا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو کچھ مہلت تو دیتا ہے لیکن لمبی مہلت نہیں دیا کرتا، اور خدا کی تقدیر ان کو پکڑا کرتی. اس کے مقابل پر تیسری دنیا کی قوموں کے لیے بہت بڑے ہولناک دن آنے والے ہیں. وہ نہتے ہو چکے ہیں، ان کے سروں کی چھت اڑ گئی، کوئی ان کا دنیا کا سہارا نہیں رہا. اس لیے ان کے لیے دعا کریں کہ وہ نیلی چھت والے سے تعلق پیدا کریں، اس خدا سے تعلق پیدا کریں جس کی چھت ساری کائنات پر محیط ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں ابتلاؤں سے بچائے گا، اور یہ بھی ممکن نہیں جب تک وہ خود عدل پر قائم نہ ہو، کیونکہ غیر عادل کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا. یہ خیال غلط ہے کہ صرف امیر اور طاقتور ظالم ہوا کرتا ہے. یہ راز سمجھنے والا راز ہے اور اس کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ غریب اور کمزور بھی ظالم ہو جایا کرتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اسے اپنے ظلم کی توفیق نہیں ملتی یا کم ملتی ہے. بس ظالم ہونا یا نہ ظالم ہونا انسان کے اندرونی رجحانات سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. میں نے تو جہاں تک نظر ڈالی ہے تیسری دنیا میں بھی اکثر ممالک ایسے ہیں جب بھی انہیں توفیق ملی ہے انہوں نے ظلم سے کام لیا ہے. وہی صدام حسین جن کے عراق پر یک طرفہ ظالمانہ بمباری کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کے دل خون ہو رہے تھے اور سخت اذیت میں مبتلا تھے، اب اندرونی طور پر ان کو چھٹی ملی ہے کہ جبر کے ساتھ بغاوتوں کو ناکام کر دیں اور ملیمیٹ کر دیں، تو اس جبر سے آگے بڑھ رہے ہیں جس جبر کی انسان کو خدا تعالیٰ کے خوف اجازت دیتا ہے. ایک جبر کے مقابل پر جبر ہے جس کی قرآن کریم نے اجازت دی ہے، اور خدا کے خوف کی راہ میں یہ بات مانے نہیں. لیکن ولا تعتدو کس شرط کے ساتھ، ہرگز تمہیں مقابل پر زیادتی نہیں کرنی. انتقام इस रंग में नहीं लेना कि जितना तुम पर जुल्म हो रहा है उससे ज्यादा जुल्म करो या इंसानी कदरों को पामाल करते हुए जुल्म शुरू कर दो। बस कुर्दों के मुकाबले पर यह जुल्म हो रहा हो या शियों के मुकाबले पर जुल्म हो रहा हो, जो भी शक्ल है, हर कौम का यह बुनियादी हक है कि वो बागियों का सर कुचले, लेकिन यह हक नहीं कि उनको आग का अजाब देके मारे, जैसा कि अमेरिका ने नेपाम बम के जरिए इराकी फौजियों पर जुल्म किए थे, या गैस से मारे या तेजाब बरसा के मारे। अगर ये बातें सच्ची हैं जो बयान की जा रही हैं, तो पता ये लगा कि फिर उधर भी जुल्म था और इधर भी जुल्म है। फिर हमारी ये दुआ जिसकी मैंने तलकीन की थी कि अल्लाह हक को फतह दे, ये किस खाते में जाएगी? हक तो फिर सिर्फ इतना सा बाकी रह गया था कि कुवैत पर इनका हमला नाजायज था और इनको कुवैत खाली कर देना चाहिए था। तो कुवैत के इनखलाक के हद, इनखलाक की हद तक तो हमारी दुआ हक वाली कबूल हो गई। उसके बाद अगर हक एक तरफ हो ही ना, दोनों तरफ ही जुल्म शामिल हो जाए, तो ये दुआ किसी के खाते में भी नहीं जा सकती, किसी के हक में भी नहीं कबूल हो सकती। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला लोगों को हक नसीब करे। इस वक्त तो ये जमाना आ गया है कि इंसान कंगाल हुआ बैठा है, अखलाक से आरी हो गया है, हक से आरी हो गया है। गरीब कौमें अगर दूसरी हमसाया कौमों पर जुल्म नहीं करती तो अपने गरीब बाशिंदों पर, अपने मुल्क के बाशिंदों पर जुल्म करती है। हर ताकतवर कमजोर पर जुल्म कर रहा है। ऐसी अफरत तफरी के जमाने में जबकि ताकत को गोया कि यह इख्तियार है कि हर किस्म के जुल्म और सितम बजा लाए और कोई उसको रोकने वाला ना हो, ऐसे दौर में कौमों के ताल्लुकात इसी जुल्म के रिश्ते पर ही कायम होते हैं। तो आज अमेरिका को जहां खुदा ने यह तौफीक बख्शी है कि अब उसका मुकाबल पर उसका कोई रकीब नहीं रहा, पहले अगर मजबूरियां बीच में तो अब मजबूरियां नहीं रहीं, इस वजह से खुदा ने उसे तौफीक बख्शी है कि वो बेधड़क होकर दुनिया में इंसाफ कायम करने की कोशिश करे। तो ये मौका फिर कभी शायद हाथ ना आए। आज अगर पहले कदम गलत उठ गए तो फिर दोबारा उनकी उन गलत फैसलों की दुरुस्ती मुमकिन नहीं रहेगी। इसलिए मैं जमात को खुसूसियत से दुआ की तरफ मुतवज्जे करता हूं कि अल्लाह ताला ही है जो अमेरिका की कौम को इस अजीम तारीखी सआदत हासिल करने के बाद कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कौम बन के उभरी है, ये सआदत अता करे कि इस ताकत को बनी नौ इंसान और खुद अपने आकबत के खिलाफ इस्तेमाल न करे बल्कि इंसाफ कायम करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला उसके नतीजे में इस ताकत को लंबा कर देगा और सैकड़ों साल तक दुनिया को अमन नसीब रहेगा। लेकिन आसार ऐसे जाहिर हो रहे हैं जिनसे मुझे खतरा है कि शायद ये ना हो सके। पर दूसरी सूरत में तीसरी दुनिया के लिए दुआ करें, कमजोर मुल्कों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिल में इंसाफ पैदा करे, उनके दिल में रहम पैदा करे, उनको अपनी अखलाकी तामीर नौ की तौफीक बख्शे। क्योंकि ताकतवर कौम का ताकत से मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन ताकतवर कौमों का आला अखलाक के साथ जरूर मुकाबला हो सकता है। ये राज है जो कुरान करीम ने हमें समझाया है। बस अगर कोई कौम अखलाकी लिहाज से मजबूत हो जाए और अपने नोक प्लस दुरुस्त कर ले और अपने अंदर तवाजुन पैदा कर ले और हिरस व हवा से बाज आ जाए और कनात की जिंदगी बसर करना सीख जाए और गुर्बत में ही अपनी गरीबाना जन्नत बनाने की अहलियत पैदा कर ले, तो ऐसी कौम पर कोई दुनिया की ताकत हुकूमत नहीं कर सकती। आला अखलाक से बढ़कर इंसान का कोई दिफा नहीं। बस दुनिया के तीसरी दुनिया के मुल्कों को मैं बार बार यह नसीहत करता हूं कि अपनी अंदरूनी इसलाह करें, अपने अखलाक दुरुस्त करें, अपने अंदरूनी ताल्लुकात को दुरुस्त करें, इनकिसार पैदा करें और फिलहाल गैर कौमों पर इन्हिसार को अगर फौरी तौर पर तर्क नहीं कर सकते तो कम से कम ये मंसूबा बनाएं कि जितनी जल्द हो सकेगी आप गैर कौमों पर इन्हिसार से तौबा करेंगे और खुददारी की जिंदगी बसर करेंगे, खा गरीबाना हो। अगर ये नसीहत तीसरी दुनिया ने मान ली और जमात ने दुआएं की और वो मकबूल हुई और आहिस्ता आहिस्ता, अगर सब ने नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता बाद मुल्कों ने इन पर अमल करना शुरू कर दिया,
تو پھر ہم یہ یقین کر سکیں گے کہ اگر طاقتوروں نے غلطی کی تو پھر بھی اتنا بڑا نقصان اس کا بنی نوع انسان کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ کمزور اپنی اصلاح کے ذریعے ان غلطیوں کے زد سے بچتے چلے جائیں گے اور اپنا دفاع وہ خود تیار کر لیں گے. اگر یہ نہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ جنگیں ہوں گی، غریب قومیں غریب قوموں سے لڑیں گی، امیر قوموں سے ہتھیار خریدیں گی اور اپنے غرباء کا خون چوس کر، اپنے ساتھی غرباء کا خون بہانے کے انتظامات کرے گی. یہ خلاصہ ہے اس دنیا کا، بڑا مکروہ خلاصہ ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جب اخلاق سے عاری ہو کر سیاست پر نظر کی جاتی ہے اس کے سوا اور کوئی خلاصہ نہیں نکل سکتا. بس اپنے اس رمضان میں خاص طور پر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو عقل اور تقویٰ اور انصاف عطا کرے اور جماعت احمدیہ کو یہ توفیق بخشے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود اپنی دعاؤں کے ذریعے اس دور میں سب سے زیادہ اہم تاریخی کردار ادا کرے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.